तत् तु कालस्य स्त्रीवत् मतूतिरोदधे ऋषिणा अनुग्रहितं माम अधुना अपि अजाहत् स्मृतिः तत् दैट इंस्ट्रक्शन ऑन रिलीजन एंड नॉलेज. ये इंग्लिश की बुक कौन सी हुई है? ओ ना इंग्लिश ना हिंदी कोई सही तरह से मुझे आते नहीं है. तत् वह धर्म तथा ज्ञान विषयक उपदेश तू निसंदेह कालस्य समय के दीर्घत्वात् दीर्घ होने के कारण स्त्रीत्वात् स्त्री होने के कारण मातु मेरी माता का तिरोदधे लुप्त हो गया ऋषिणा ऋषि द्वारा अनुग्रहितम आशीर्वाद से माम मुझको न नहीं अधुना आज अपि भी आज हाथ छोड़ पाई स्मृति स्मृति नारद मुनि के उपदेशों की. अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गईं, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था अतएव मैं नहीं भूल पाया. प्लीज रिपीट. अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गईं, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था अतः मैं नहीं भूल पाया. तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की एक भगवत गीता और मिल सकती है हिंदी के. भगवत गीता 9वें अध्याय के 32 श्लोक में भगवान कहते हैं कि हिंदी भगवत माम हि पार्था व्याप्रश्रित्य ये अपि सो पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रो स्थे अपि यन्ति परां गतिम्. हे प्रथा पुत्र, ये तो तात्पर्य इसको रिपीट नहीं करना. हे प्रथा पुत्र, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं. तात्पर्य के प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद राइट अवे भगवद गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, और ये जो अभी हमने पढ़ा उसका अनुवाद था उसका तात्पर्य हम आपको इसमें से थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसका तात्पर्य पहले पढ़ेंगे। पाप योनि शब्द उन लोगों के लिए आया है जो शूद्रों से भी निम्न है, किंतु भले ही स्त्री पाप योनि न हो लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण वह कभी कभी भक्ति के उपदेशों को भूल जाती है। परंतु जो पर्याप्त सुदृढ़ हैं उनके भूलने का प्रश्न ही नहीं होता। सामान्यतः स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती हैं, जिसके कारण वे कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती हैं। किंतु चाहे वह स्त्री ही क्यों ना हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती हैं तो भगवान के ही कथन के अनुसार वह भगवत धाम वापस जा सकती है। ते अपि यन्ति पराम गति। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करके विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थी। अतएव वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सके। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक है 16वां श्लोक, उस बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट को टच करता है जो आजकल इस्कॉन में बहुत पॉपुलरली डिस्कस हो रहा है। एकलव्य प्रभु जानते हैं दिस इज द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन इस्कॉन। हर साल अगले साल द FDG इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस। सो इसको थोड़ा सा समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ प्रहलाद महाराज ने स्वयं अपनी माता को अल्पज्ञ कहा है और स्त्री के शरीर में होने की वजह से उनकी लिमिटेशन बताई। ऐसा केवल प्रहलाद महाराज ने नहीं किया, शास्त्रों में वेदों में कई स्थान पे ऐसा बताया गया है। रामायण में भी एक जगह बताया गया, विधिहीना नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग आव गुण खानी। तुलसीदास जी ने तो अवगुणों की खान बताया है। ऊपर से आगे अरण्य कांड में तुलसीदास जी बता तो रहे हैं लेकिन कोट कर रहे हैं रावण को, आदाम ते आदाम आदाम अति नारी तीने मन में मति मंद आधारी। जो अधम से भी अधम है उससे भी ज्यादा अधम है नारी। और बहुत सारे खोट बताए। इसमें तो अधम, मतिमंद और आगे नारी स्वभाव सत्य कवि कहनी, अवगुण आत सदा उर रही, सहस अनरित चपलता माया, भय अविवेक असौच अधाया। और आठ अवगुण बताए। एक अवगुण जो मन की बात मन में नहीं रख सकती, इनडिस्क्रीट। झूठ, स्थान बदलना, डरपोक, असौच और अदयावान, जो दयावान नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बहुत समय से ये वैदिक स्क्रिप्चर्स तो हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी कोई कुछ बोला नहीं, इनको कभी किसी ने क्लीन अप नहीं किया। यहां तक के भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज भी, उनके आश्रमों में भी कोई स्त्री नहीं रहती, विवाह का कोई प्रावधान नहीं है। किसी मंदिर में, किसी आश्रम में कोई स्त्री नहीं, ना किचन में, ना ऑल्टर में। मंदिर में दर्शन करने आना अलाउड, लेकिन चलो प्रभुपाद एक हमारे पहले ही हैं जिन्होंने स्त्री को भी बराबर का दर्जा दिया। तो उस हिसाब से श्रील प्रभुपाद ने एक सही दिशा हमें दिखाई है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। वैसे इसका जवाब और भी है, फनी जवाब। इनमें सबसे बुरा जो श्लोक है जिसको कहा जा सकता है, श्री राधा राधिका रमण की, वो है ढोल गवार मूर्ख और नारी चारों ताड़न के अधिकारी। ढोल को, गवार को, मूर्ख को और नारी को, इन चारों को पीटा जाना चाहिए। तो जब ये श्लोक सुरेंद्र शर्मा ने बताया, सुरेंद्र शर्मा को जानते हैं कोई? तो सुरेंद्र शर्मा की पत्नी ने जवाब दिया उनको कि ये चार जो है ना, इसमें से केवल एक नारी है, बाकी तीन तो पुरुष है। तो इसका मतलब अगर ताड़न के अधिकारी हैं तो 75% में पुरुष है, 25% में नारी है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सब चीज देखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए फिर भी एक रास्ता हमें दिखाया है, सही रास्ता, बीच का रास्ता। क्योंकि ये जितने भी खोट हैं वो केवल नारी के नहीं है, बाकी सब में भी ये सारे खोट हैं। लेकिन इंग्लिश में एक सेइंग है, क्या कहते हैं, Behind every successful man, there is a woman. और ये कोई खाली इंग्लिश का नहीं है या वेस्टर्न कल्चर का नहीं है, हमारी कल्चर में भी तुलसीदास जी जिन्होंने सबसे ज्यादा इस तरीके के श्लोक लिखे हैं, उनको तुलसीदास बनाने वाला कौन था? उनकी पत्नी। सबसे पहले उनकी पथ प्रदर्शिका गुरु उनकी पत्नी थी, जिन्होंने उनको कहा कि जिस तरह से तुम मुझे ढूंढ रहे हो उस तरह से मेरे शरीर के लिए, उस तरह से अगर भगवान को ढूंढने के लिए तुम अपना तन्मयता, अपनी अपना टाइम, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी निष्ठा उसको लगाओ तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। और तुलसीदास जी को भगवान मिले। ऐसे ही कालिदास, बहुत बड़े कवि, स्कॉलर, कैसे कहते हैं स्कॉलर को, विद्वान, बहुत विद्वान कवि, भारत में सबसे अधिक विद्वानों में उनका नाम आता है। कैसे बने कालिदास? अपनी पत्नी की वजह से। पत्नी ने उन्हें ताड़ना दी। कालिदास मूर्ख थे और ब्राह्मणों ने कुछ ट्रिक करके उनको चुप रहने के लिए कह के राजकुमारी के पास ले गए। वास्तव में क्या हुआ था, राजकुमारी उस स्कॉलर से शादी करना चाहती थी जो संस्कृत उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से समझता हो। तो जो ब्राह्मण लोग जो अपने आप को संस्कृत का स्कॉलर समझते थे उन सबको राजकुमारी ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो लोग इस महामूर्ख को ले गए कि ये सबसे बड़ा स्कॉलर है संस्कृत का, लेकिन अभी जरा इसने मौन व्रत लिया हुआ है। तो राजकुमारी ने कहा कोई बात नहीं, उसको भी अपने ऊपर बहुत घमंड था कि हाँ मैं मौन की भी परीक्षा ले लूंगी बिना ही बात करे। तो राजकुमारी ने कुछ ऐसा वर्णन है कि एक उंगली दिखाई तो कालिदास, जो कुछ भी उनका नाम था पहले कालिदास बनने से पहले, उन्होंने सोचा शायद ये एक उंगली इसलिए दिखा रही है कि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने दो दिखा दी, तूने मेरी एक फोड़ी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने उसको समझाया हुआ था कि बोलना कुछ मत, जो कुछ समझ आए करना। तो उन्होंने समझा दिया राजकुमारी को कि ये आपको बता रहे हैं कि हाँ भगवान तो एक है लेकिन जीव और भगवान दो अलग अलग हैं। जो कुछ भी इंटरप्रिटेशन वो बताना चाहते थे बता दिया, राजकुमारी को फूल कर लिया और महामूर्ख की शादी उस राजकुमारी के साथ करा दी जो महास्कॉलर से शादी करना चाहती। तो शादी के बाद जब राजकुमारी को ये पता लगा कि ये तो महामूर्ख है, ये तो संस्कृत का एक शब्द भी, उन दिनों संस्कृत ही लोग बोलते थे, संस्कृत के अलावा कोई और लैंग्वेज तो थी नहीं, लेकिन संस्कृत का उच्चारण कौन कितने क्लियरली कर रहा है उससे पता चलता है कि वो कितना जानता है। जैसे आज भी हम हिंदी या इंग्लिश जो कोई भी, कौन, हर व्यक्ति हिंदी बोलता है, कौन है जो बना बिना पढ़ा लिखा भी हिंदी बोलता है? लेकिन आप बिना पढ़े लिखे से हिंदी में बात कर रहे हो या किसी पढ़े लिखे से हिंदी में बात कर रहे हो तो आपको एक मिनट में बात करके समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कितना पढ़ा लिखा है। तो जब उसका मौन व्रत टूटा तभी उसका सारा भेद खुल गया और राजकुमारी को पता लग गया। तो राजकुमारी ने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया वहां से। वो बेइज्जती उनके हृदय को लग गई और फिर वो पढ़ने के लिए स्कूल गए। एडल्टहुड तक उन्होंने स्कूल नहीं देखा था। और फिर इतने महान कवि, इतने महान स्कॉलर संस्कृत के बने कि आज तक उनके टॉप स्कॉलर्स में इंडिया की गिनती होती है। तो ये भी हमारे ही साहित्य में से, हमारे वेदों शास्त्रों में से उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बिल्व मंगल ठाकुर भी हैं, आप सब लोग सुनते आए होंगे बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में, गुरु महाराज भी बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक पहले धर्म के प्रचारक हैं जिन्होंने स्त्रियों को इस तरह से पूरा बराबरी का स्थान दिया है। भारत में, भारत के कल्चर होने की वजह से यहाँ पे अभी भी स्त्रियाँ ऑल्टर पे नहीं जाती, लेकिन बाकी के बाद सारे संसार में स्त्रियाँ ऑल्टर पे आरती करती हैं और प्रवचन भी देती हैं, व्यासासन पे भी बैठती हैं, प्रवचन भी देती हैं। ये सब क्यों हुए? श्रील प्रभुपाद की इच्छा क्यों, श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन क्यों, श्रील प्रभुपाद ने कोई अंतर नहीं बताया। इसलिए वो पहले ही कह रहे हैं कि सबसे पहले वो भगवान को कोट कर रहे हैं कि भगवान पहले ही भगवद गीता में ये आश्वासन हमें दे रहे हैं कि स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो पहले भगवान ने ही इस बात का एक तरह से खंडन किया है कि कोई पुरुष ये समझ के नहीं बैठ जाए कि या अच्छी जाति में पैदा हुआ हुआ या कोई ब्राह्मण पुरुष ये समझ के नहीं बैठ जाए कि जो लिबरेशन का स्थान है वो मेरे लिए सुरक्षित है या केवल मुझे ही मिल सकता है, मैं मुझे बाकी सबको नीचा देखने के लिए मुझे अधिकार मिला हुआ। ऐसा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान साफ कह रहे हैं कि जो परम गति किसी को भी प्राप्त हो सकती है वही एक बहुत बड़े ब्राह्मण को भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि कथा है, आपने शायद सुनी होगी कि एक महंत जो सुबह सुबह मंगल आरती के लिए भगवान को उठाने के लिए अपने घर से जा रहे थे, वो पंजाबी बाग मंदिर की तरह ऊपर नहीं रहते थे, कहीं और आसपास में, तो रास्ते में कुछ पानी वानी भरा हुआ था और एक सूखी जगह में एक कुत्ता लेटा हुआ और उसी सूखी जगह में से उनको अपनी धोती वगैरह बचा के सब कुछ करके निकलना था। तो ये महंत ने कुत्ते को लात मारी, क्या क्या से तुझे दिखता नहीं, मैं जा रहा हूं मंगल आरती के लिए भगवान को उठाने। तो कोई बात नहीं, कुत्ता बाद में राजा के दरबार में गया और राजा से शिकायत की कि ये, सॉरी वो महंत नहीं थे, पुजारी, ब्राह्मण पुजारी, कि मुझे ऐसे ऐसे लात मारी गई। मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राजा ने सब केस सुना, निर्णय देने के लिए क्या करें, ब्राह्मण को कैसे सजा दें, मैं क्षत्रिय हूं, अब ये कह रहा है कि इसके प्रति अत्याचार हुआ है तो इसको भी सुनवाई भी करनी होगी। तो अंत में कुत्ते से पूछा गया कि क्या करें इसका, आप बताओ ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए, कि जो ब्राह्मण पुजारी है इसको महंत बना दो, हाईएस्ट पुजारी। ये क्या, ये कोई सजा है? ये तो पारितोषिक है कि नहीं? नहीं, आप नहीं समझते, ये सजा ही है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी मानता। नॉट यूजिंग योर पोजिशन इन द राइट वे, या किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करना, अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, उसका मतलब हम दूसरों को नीचा समझ रहे हैं। और यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शूद्र और वैश्य और निम्न जाति के और पाप योनि भी भगवान के घर जाने के उतने ही अधिकारी हैं जितने हम हैं। तो फिर ये मिथ्या अहंकार क्यों? चलो, प्रभुपाद ने हमारा वो मिथ्या अहंकार एक तरफ रखवा दिया और मलेच्छों को भी व्यासासन के ऊपर बैठा दिया, और मलेच्छों की भी जीवन शैली इतनी सुधार दी कि उनसे हम सीखते हैं और उनसे उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनका उदाहरण हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है। इस दृष्टि से श्रील प्रभुपाद को एक तरह से एक सोशल रेवोल्यूशन लाने वाला व्यक्ति भी समझना चाहिए। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं हिंदी, सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति। श्रील प्रभुपाद ये सामाजिक क्रांति लाए कि किसी के ब्राह्मण कुल में जन्म होने का कोई अर्थ नहीं है, जब तक वो गुण कर्म नहीं है वो बैठेगा नीचे और शूद्र जाएगा ऑल्टर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि उसमें गुण और कर्म ब्राह्मण का जन्म का कोई सारोकार नहीं, किसका कैसा क्या जन्म है उससे कोई मतलब नहीं। तो आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पाप योनि में स्त्री को भी डाला गया है, लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण कभी कभी भक्ति के उपदेशों को भूल जाती है, परंतु जो पर्याप्त सुदृढ़ हैं उनके भूलने का प्रश्न नहीं उठता। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, स्त्री अगर ऐसी है भी तो भी सब स्त्री एक समान नहीं होती, जैसे हमारी पांचों उंगली एक समान नहीं है, कोई भी पांच पुरुष एक समान नहीं है, तो फिर पांच स्त्री कैसे एक समान हो सकती? कोई ऐसे जेंडर बेसिस पे, क्या कहते हैं हिंदी में, लिंग के आधार पे किसी को अल्पज्ञ या मूर्ख नहीं कहा जा सकता। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सामान्यतः स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती हैं, जिसके कारण वे कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इसमें कभी कभी लगा दिया। ऐसा कोई भी नियम रियली, ये फिलॉसफी है, दर्शन है, इसमें ज्यादातर सभी नियम 100% लागू नहीं होते। किसी प्रकांड ब्राह्मण स्कॉलर के घर क्या पैदा होगा, क्या संतान होगी, कौन कह सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो किसी के भी कुछ भी होने की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर स्त्री के मूर्ख होने की क्या गारंटी है, वो भी नहीं है। और पुरुष के मूर्ख ना होने की क्या गारंटी है, कम पुरुष है जो मूर्ख हैं और अल्पज्ञ हैं, कम है, नहीं, वो भी नहीं है कोई गारंटी। तो उस हिसाब से फिर दोनों बराबर ही हैं, क्या फर्क है, क्या अंतर है? ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है और ये उनके जीवन की शैली भी है, और इसी तरह से उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है और उसी तरह से आज भी इस्कॉन ऑपरेट होता है। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं किंतु चाहे वह स्त्री क्यों ना हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती है तो भगवान के कथन अनुसार वह भगवत धाम वापस जा सकती है। और पुरुषों के लिए क्या कंडीशन है? सेम कंडीशन, कुछ डिफरेंट है? सेम कंडीशन। जो अपने आप को समझता नहीं नहीं मैं नारी नहीं हूं, उसको भी विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करना ही होगा। जब विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करेंगे तो चाहे हम पुरुष के शरीर में चाहे नारी के शरीर में, भगवान का भी कथन यही है, श्रील प्रभुपाद का भी कथन यही है जो उनके शुद्ध भक्त हैं, कि सबका भगवत धाम जाने का अधिकार सेम है, कोई अंतर नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करके विधि विधानों से कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो दोनों के लिए दे रहे हैं, मनुष्य मीनिंग स्त्री और पुरुष दोनों आ गया, कोई भेद नहीं रह गया, मनुष्य में सब इंक्लूडेड है। तो मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करके विधि विधान से कड़ाई से पालन करना चाहिए, तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा, बिना भेदभाव के भगवत धाम वापस जा सकेगा। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थी, अतः वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सके। क्यों? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उसका ज्यादा ध्यान इसमें है कि किस तरह से मैं अपने शिशु की रक्षा कर सकती हूं, कितना जल्दी मेरे पति वापस आएंगे, क्योंकि हर स्त्री यह समझती है कि मेरे पास जो शिशु है वो मेरे पति की धरोहर है मेरे पास, तो वो अपने पति की धरोहर को उसकी एब्सेंस में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होके उसको उसकी रक्षा करती है और जल्दी से जल्दी उसको अपने पति को हैंड ओवर करना चाहती है कि ये आपकी धरोहर आपके। तो श्रील प्रभुपाद ये बता रहे कि उनका मन ज्यादा इस बात में था और नारद मुनि क्या उपदेश दे रहे हैं उसमें ध्यान कम था, ऐसा नहीं था नहीं था लेकिन कम था। तो किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, ज्यादातर सभी मंदिरों में हमारे ब्रह्मचारिणी आश्रम है, या नहीं होते इंडिया में हमारे ब्रह्मचारिणी आश्रम ज्यादातर सारे। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स? कैसे कहते हैं हिंदी में क्वेश्चंस और कमेंट्स, प्रश्न या टिप्पणी? कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी?
तो जी मुझे पूछना था कि आप बता रहे थे भी कि कोई डिपेंडेंस नहीं है कि हम किस घर में पैदा हो रहे हैं, कि ब्राह्मण के घर में हो रहे हैं, क्षत्रिय के हो रहे हैं, वैश्य के हो रहे हैं, जो मैं मेरी लर्निंग है उससे मैंने थोड़ा समझा कि अगर मेरे जो कर्म है, मैं अगर अभी भगवान का नाम लेता हूँ, चाहे मेरी आसक्ति है कि मैं आखिरी में शायद मरते वक्त भगवान का नाम नहीं ले रहा, तो इसलिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि मैं किस जन्म, अगले जन्म में कहाँ जन्म ले रहा हूँ, तो ब्राह्मण के घर में ले रहा हूँ या फिर उस घर में ले रहा हूँ जहाँ भगवान का ज्यादा नाम लिया जाता है, तो वो भी तो कहीं किसी चीज से रेलेवेंस होगा उसका, कि अगर मैं उस घर में ले रहा हूँ जहाँ कृष्ण नाम ज्यादा लिया जाता है.
ऑफ कोर्स रेलेवेंस तो है, लेकिन गारंटी नहीं है. सबसे पहले तो अगर मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो रहा है तो ये कोई गारंटी नहीं कि वहां पे भगवान का नाम लिया जा रहा है. दूसरी बात, ये कोई गारंटी नहीं कि भगवान का नाम केवल सुनने से ही मेरा भी, मेरी जो, मेरे जो कर्म और गुण हैं वो जरूरी ही उसी जन्म में वैसे ही बन जाएंगे. गारंटी नहीं है ना. बहुत से लोग जन्म ही मंदिर में होता है, भगवान नाम के अलावा कुछ सुना ही नहीं, लेकिन बड़े होके बनते हैं पूरे राक्षस, क्योंकि उनको भगवान नाम के अलावा सब कुछ सुनना है, भगवान नाम से है एलर्जी. तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान नाम व्यर्थ जाने वाला है, लेकिन उसका एडवांटेज वो अभी नहीं ले रहा, कभी ना कभी जीवन में लेगा. जैसे कि मेरा जन्म अगर भारत के सबसे बेस्ट सर्जन के घर में हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सर्जन हो गया, या कोई मेरे पास आके कहेगा कि कोई बात नहीं आपके पिताजी नहीं है तो मेरे बच्चे की सर्जरी आप ही कर दो, आपके पिता तो सर्जन हैं, बेस्ट हैं सारे भारत में, तो आप उनके पुत्र हो सेकंड बेस्ट, आप ही कर दो, कोई कहेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है. वो उसको प्रोसेस के थ्रू, रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, जैसे कि श्री प्रभुपाद यहां बता रहे हैं, विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास, देन यू बिकम क्वालिफाइड, एंड द क्वालिफिकेशन ऑल्सो ओनली स्टेज एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग. हमारे ये सिस्टम नहीं है कि एक बार किसी को ब्राह्मण दीक्षा हो गई उसके बाद वो कहीं जाए कुछ भी करे उसको हम ब्राह्मण ही मानेंगे कि आ जाओ, कभी भी आके ऑल्टर संभाल लो. नो, यू हैव टू गो बैक इनटू प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, विधिवत अभ्यास.
अब ये ठीक है, लेकिन अब जैसे कि मैं अगर ब्राह्मण परिवार में अगर मेरा जन्म होता है तो स्कॉलर्स कहते हैं ना संगत, अगर मेरी एसोसिएशन किन के साथ है, अगर मैं स्कॉलर्स के बीच में बैठा हूँ, अगर वो मेरे पे कृपा है कि मैं, वो तो कृपा है मेरे पे कि मैं अगर नाम लेता हूँ नहीं लेता भगवान का या फिर छोड़ दिया मैंने, लेकिन अगर मैं स्कॉलर्स के बीच में बैठा हूँ, मैं भी स्कॉलर्स बनने के मेरे चांसेस ज़्यादा है. अगर मैं शराबियों के बीच में बैठूंगा जो मदिरा लेते हैं, तो मैं भी वैसे ही आसक्ति हो रहेगी, मेरी मेरी सोच वैसे ही चलेगी, ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है, मतलब देर से रोश रेशो अराउंड 90% की मेरे वैसे ही आसक्ति चलेगी.
ऑफ कोर्स,
तो वो तो बेनिफिट मिलता ही है ना.
एग्री, द बेनिफिट इज देयर, बट यू टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट और नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट इज अप टू यू. जो फायदा है वो तो है, लेकिन हम उसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे वो हमारे ऊपर. अपॉर्चुनिटी इज देयर, लेकिन इफ वी यूज द अपॉर्चुनिटी. अभी हम सुबह को आ रहे थे तो एलिवेटर में, लिफ्ट में ऑपरेटर था, उसने बड़े सुंदर से बड़ा सा नेम टैग लगाया हुआ था, पता नहीं क्या नाम था उसके आगे, भारद्वाज. तो उच्च कोटि का ब्राह्मण है, वो हमारे लिए लिफ्ट चला रहा है और हम जन्मे हैं निम्न कोटि परिवार में, वैश्य. उस बेचारे ने पूरे समय ऐसे सर नीचे करके उठाया नहीं, बिल्कुल जैसे उसको केवल ग्राउंड दिख रहा है, उसने सर उठाया भी नहीं. तो कुछ होगी फीलिंग उसको, हमें ऐसा लगा कि शायद उसको कुछ ऐसी फीलिंग है, कि मैं उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं और ये लोग खासतौर पर हमारे राधा रमन प्रभु जी जो आगे थे, मैं तो इनके पीछे ही रहता था। आप भी ब्राह्मण हो जन्म से? नहीं, ब्राह्मण नहीं होगा तो ये भी नहीं, मैं तो वैसे ही शूद्र हूं, ये भी ब्राह्मण नहीं, मीनिंग जन्म से। ठीक है, और कोई? यस, पीछे एक माता जी भी हैं, पहले ये दो माता जी, दो माता हैं पीछे। ओके, क्विकली।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये जो टॉपिक है बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बहुत ऐसा मतलब जैसे आपने समझाया वैसे प्रतीत होता है कि ये एक्चुअली कोई इतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन अगर जो ये इतनी ही नॉर्मल बात है तो फिर ये मतलब हमारे आचार्यों ने क्यों इतने सारे श्लोक कोट किए हैं? हु आर द एक्चुअली रियल ऑडियंस फॉर दिस दीज श्लोकास? जैसे तुलसीदास जी के आपने बहुत सारी चौपाइयाँ कोट की हैं, तो उसके असली ऑडियंस कौन है? जैसे आपने समझाया तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग है क्या है कि प्रचार करने वाला कौन है। जैसे कि कलयुग का असर सबसे पहले किसके ऊपर हुआ? ब्राह्मण कहते हैं कि क्षत्रियों के ऊपर हुआ या परीक्षित महाराज के ऊपर हुआ? शैल प्रभुपाद कहते हैं नहीं, परीक्षित महाराज के ऊपर नहीं हुआ, ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण ये बात मानेंगे नहीं, वो ये बात का प्रचार करेंगे नहीं, और व्यास आसन तो हमने ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित किया हुआ है आमतौर पे, मतलब इस्कॉन से बाहर जनरल दुनिया में व्यास आसन तो केवल उसी के लिए सुरक्षित है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है। वो ये बात कभी मानेगा नहीं कि कलयुग का सबसे ज्यादा इफेक्ट ब्राह्मणों के ऊपर है, जो शैल प्रभुपाद कहते हैं जो जन्म से ब्राह्मण है सबसे ज्यादा कलयुग का इफेक्ट उनके ऊपर है। आप देख लो, आज से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। बहुत सारे ब्राह्मण आपको ऐसे मिलेंगे उनको लीस्ट रेस्पेक्ट है, श्रद्धा के नाम पे जीरो है, और धर्म का नाम का फायदा उठाने में 100। तो इट डिपेंड्स हूज प्रीचिंग, ऑल द मैन आर प्रीचिंग सो दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोजिशन ऑफ द वुमेन, बट श्रील प्रभुपाद इज फेयर टू मैन एंड वुमेन। कि ये मेरी डिसाइपल्स भी मेरी डॉटर है और ये भी उतनी ही केपेबल हैं जितने मेरे सन हैं, बल्कि और भी ज्यादा कई फील्ड्स में। तो श्रील प्रभुपाद ने ये एक समाज का सुधार किया है, लेकिन ये स्त्रियों का आश्रम और ये सब बहुत बड़ी परेशानी का जंजाल भी बन सकता है, इसलिए भारत में हम नहीं करते, लेकिन बाकी सारे संसार में तो हमारे ब्रह्मचारिणी आश्रम और सब कुछ है, स्त्रियां मंदिर में आराम से एक सुरक्षित स्थान पर ब्रह्मचारिणी आश्रम में रह सकती हैं और सब कुछ सुविधा है। पीछे वाली माता जी वो एक पहले हैं, फिर वो वाली दूसरे, पहले किसने, वो पहले ये वाली हैं, फिर वो वाली हैं, फिर ये आगे वाली माता जी।
हरे कृष्णा, मेरी एक टिप्पणी है छोटी, मतलब भक्ति में तो मैंने पढ़ा है हमेशा, भक्ति में तो सभी स्त्रियां, सिर्फ परम पुरुष कृष्ण ही पुरुष हैं, परम भगवान कृष्ण ही पुरुष हैं, और भक्ति में सभी स्त्रियां हैं।
वेरी गुड,
गोपी भाव में हमें भक्ति करनी चाहिए।
वेरी गुड, दैट इज अनदर आस्पेक्ट,
गोपी भाव ही श्रेष्ठ है और गोपी भाव में हमें भक्ति करनी चाहिए।
यस, थैंक यू।
तो इस भेदभाव का फर्क नहीं होना चाहिए कभी भी,
थैंक यू।
हरे कृष्ण,
वेरी गुड। पीछे वो ब्लैक सूट वाली माता जी ऑन द चेयर, ब्लैक चश्मा, शी इज फर्स्ट।
हरे कृष्णा,
जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण परिवार का कोई पुरुष या कोई बच्चा ब्राह्मण नहीं बन पाता और कुछ और बनता है, लेकिन अगर कहते हैं कि अगर एक बच्चा भगवान की शरण में चला जाता है तो उसके परिवार की 21 गतियाँ 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, तो क्या ये सही है?
शास्त्रों के अनुसार ये सही है, हम तो वही बात करते हैं जो शास्त्रों में लिखी है, जो आपने कोट किया बिल्कुल शास्त्रों से आ रहा है, लेकिन तो वो तर जाए तब।
लेकिन प्रयास तो हमें करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा कि हम अगर जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारा अपना पेट नहीं भरेगा।
हाँ,
तो उसी तरह अगर हम जैसे कहते हैं कि एक बच्चा शरण भगवान की शरण में चला जाता है तो 21 गतियाँ 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, तो क्या उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी उसी तरह से भक्ति करनी चाहिए या नहीं?
हाँ, ऑफ कोर्स करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्वयं कह गए हैं कि आपने पता नहीं ये स्टेटमेंट कभी सुना है कि नहीं, और लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि मेरी सबसे बड़ी होप ये है कि कोई मेरा डिसाइपल या मेरे डिसाइपल्स का डिसाइपल ऐसा बनेगा जो वास्तव में बैक टू गॉडेड जाएगा और वो मुझे भी साथ में लेके जाएगा। सुना है, वास्तव में ये श्रील प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी है, लेकिन फिर भी ये श्रील प्रभुपाद की होप है तो हमारी क्या कही जा सकती है। ये वाली माता जी, ओ अनदर ब्लैक सूट माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ एक बात से। एक तरफ हमें कहा जाता है कि भारतवर्ष में पैदा होना बहुत सौभाग्य की बात है, और फॉरेन में जितनी भी स्त्रियां हैं वो ऑल्टर की सेवा कर सकती है मंदिर में। सो अब मैं क्या मांगूंगी, मैं भारतवर्ष में पैदा होकर ऑल्टर की सेवा ना करूं या वहां पैदा होकर ऑल्टर की सेवा करूं?
आ जाओ, अपना पासपोर्ट बनाओ, वीजा लगाओ, आ जाओ।
नहीं, बट मैं
सारा इस्कॉन इंटरनेशनल इस्कॉन सब आपके लिए खुला है, कौन आपको भारत में रोके हुए?
नहीं, बट भारतवर्ष में पैदा होना भी तो बहुत सौभाग्य।
श्रील प्रभुपाद ने ये मंदिर या एक आश्रम या एक ऐसा स्थान सारे दुनिया में बनाया है जिसमें सारी दुनिया समा सकती है।
बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर क्यों नहीं?
हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो भारत में पैदा हुए हैं वो भारत के मंदिरों में जा सकते हैं, दूसरे मंदिरों में नहीं आ सकते, राइट? एकलव्य प्रभु, वी आर ओपन, वी एक्सेप्ट इंडियन डिवोटीज इन द वेस्टर्न टेम्पल्स। यस, वेरी गुड। ये माता जी ग्रीन साड़ी वाली आगे जो बैठी हुई है, अपने घर को ही ब्रह्मचारिणी आश्रम बना लो। ऐसा होता है कि विदेशों में जो लोग पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुए हैं उनके लिए बहुत कठिन है हमारी संस्कृति को इवन समझना भी, लेट अलोन कि वो अपने घर में आश्रम बना पाएंगे, वो कभी भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन भारतीय स्त्रियों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, तो कोई चीज जो उनके लिए बहुत कठिन है वो हमारे लिए इतनी कठिन नहीं है। हमने क्या छोड़ा भगवान की शरण में आने के लिए, हम क्या छोड़ के आए पीछे, हमारे विदेशी भक्त क्या छोड़ के आते, सब कुछ, सब कुछ छोड़ के आते, एक भी फ्रेंड उनका साथ में नहीं आता, एक भी फैमिली मेंबर साथ में नहीं आता। यहां हमारे कपूरचंद जी हैं, सारी की सारी फैमिली को साथ में लेके आ रहे हैं। थैंक यू। और जो बाकी के प्रश्न हैं कल ले आइएगा, कल मैं और शाम को भी मैं यहीं हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ। रुक्मणी कृष्ण प्रभु चाहते हैं कि मैं लेक्चर देता रहूँ, जैसे जिससे कि लेक्चर देते देते एक दिन शायद मुझे लेक्चर देना आ जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, नीताय गौर प्रेमानंद श्री।